हम संतान एकता का है वरदान
एकता की हम संतान एकता का है वरदान
हम सब रंग बिरंगे फूल हैं एक बीज की हम पहचान
एकता की हम संतान एकता का है वरदान
कली कली से महके उपवन बगिया सा अपना परिवार कली कली से महके उपवन बगिया सा अपना परिवार विश्व एकता लाने जग में हम बच्चे शिव का उपहार विश्व एकता लाने जग में हम बच्चे शिव का उपहार डाली डाली महके फिर से मानव होगा देव समान
एकता की हम संतान एकता का है वरदान एकता की हम संतान एकता का है वरदान
ओम शांति। एक संस्था में एक बार रेस थी, दौड़, और आठ बच्चियां, आठ लड़कियां उसमें दौड़ रही थी। रेस चालू हुई और दौड़ते दौड़ते एक लड़की गिर गई, और जैसे ही वो गिरी, वो जो साथ दूसरी लड़कियां थी और जो आगे थी वो भी रुकी, पीछे आई, अपने साथी को उठाया। उसको चलते नहीं हो रहा था, फिर भी वो आठों के आठों एक दूसरों को संभालते हुए, हाथ पकड़े हुए चलने लगे, और चलते चलते रेस पूरी की। ये सत्य घटना हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेस, और बाद में पता चला कहानी में कि ये जितनी लड़कियां थी वो मानसिक विकलांग थी, मेंटली रिटार्डेड, मानसिक मंदता। इन आठों बच्चियों की कहानी ने एक बात तो उन सबको सिखा दी जो मन से दुरुस्त है। ये बच्चियां विकलांग है मानसिक रीति से, परंतु फिर भी दिखाया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है, प्रेम, आईक्यू जो कि मापदंड है, वो जब 70 से कम होता है तो मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। भले वो दिमाग से कमजोर थी, उनकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से मानसिक क्षमता बहुत कम थी, परंतु फिर भी उन्होंने मानवता का वो पाठ पढ़ा था जो शायद अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी नहीं जानते। वे भी जो मुरली चली उसमें बाबा ने एकता की बात कही, बाबा ने कहा एक स्लोगन याद रखो, बाबा ने कहा ये एडिशन करो, एक शब्द याद रखो और वो कौन सा था, एक के है और एक को प्रत्यक्ष करना है, एक के है और एक का कार्य है, सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक होकर चलना, संगठन में चलने की ये कला है। इस मुरली में बहुत सारी चीजें बाबा ने कही है जो संगठन में नहीं होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस कला को नहीं सीख पाता वो धीरे धीरे अहंकार से भर जाता है। जैसे दिखाया है एक राजभवन है जहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, छोटे बच्चे खेल रहे, एक बच्चा एक पत्थर को उठाता है और आकाश में फेंकता है, वो जो पत्थर उठता है उसको अहंकार आ जाता है कि मैं कितना महान हूं, और ये जो है जो नीचे ही रह गए सारे पत्थर, मैं तो फ्लाइंग स्टोन हूं, मैं उड़ सकता हूं, और ये जो बाकी पत्थर है बेचारे वहीं जन्म लिए वहीं मर जाएंगे, इनका भी क्या जीवन है, मैं देखो कितना महान। और वो जो नीचे बैठे पत्थर थे वो भी सोचने लगे ये कैसा अवतारी पुरुष जन्म लिया है हमारे बीच, उड़ सकता है ये पत्थर, हम तो वहीं बैठे हैं, कैसे ये उड़ रहा है। और वो पत्थर, उड़ने वाला पत्थर गर्व महसूस करता है कि जीवन हो तो ऐसा, मैं भी कितना उड़ सकता हूं, मेरी पहुंच कितनी ज्यादा है। और जाते जाते उड़ते उड़ते खिड़की और खिड़की का कांच आता है और वो कांच से टकराता है और कांच टूटता है और वो अंदर गिरता है, और फिर अहंकार भरता है कि मेरे मार्ग में आने की कोशिश की, और जो मेरे मार्ग में आएगा वो चूर चूर हो जाएगा, पहले ही कहा था फिर भी नहीं सुधरा, फिर भी नहीं माना। नीचे के पत्थर देखते रहते कितना ऊंचा जा रहा है हमारा साथी, हम कब जाएंगे, कोई कोई में ईर्ष्या भरती है, हमारा तो जीवन ऐसा ही है, हमें भी उड़ना है, हमें भी जाना है ऊपर, हमें भी एक दो कांच तोड़ने हैं। कांच टूटता है, वो अंदर जाता है, अंदर कालीन बिछी होती है, उसमें गिरता है, उसको लगता है वाह क्या मेरा सत्कार, क्या मेरा स्वागत, शायद इनको पहले से ही पता था मैं आने वाला हूं, इसके लिए ये आवभगत। फिर सोचता है बेचारे मेरे दोस्त, उनका तो जीवन व्यर्थ गया। थोड़ी देर में नौकर भाग के आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, देखते हैं पत्थर गिरा हुआ है और कांच भी टूटा हुआ है, वो पत्थर को ले उठाते और नीचे फेंकते। तो ये पत्थर सोचता है क्या करना है इस महल में रहकर भी, उससे तो मेरे दोस्त ही ठीक है, आखिर महलों का कि भी का कोई जीवन है महलों में रहने का, कोई फायदा नहीं है महलों में रह के। और नीचे उतर के आता है, उतरते उतरते सोचता है देखो मेरे दोस्त कितने अच्छे, आखिर मातृभूमि मातृभूमि है, कहीं पर भी घूमो कितना भी जाओ आखिर घर तो घर होता है आखिर। और नीचे आके गिरता है, दोस्त पूछते क्या हुआ क्या हुआ, वो कहते लंबी कहानी है, इतनी सारी चीजें हुई, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, यहां घूमा वहां घूमा। वो कहते बताओ बताओ, कहते कितना बताओ, वो कहते किताब लिखो, वो कहते ठीक है किताब लिखता। तो वो किताब अभी, वो पत्थर अभी किताब लिखने में व्यस्त है, जीवन कहानी, मेरी जीवन यात्रा, मेरा रूहानी सफर, मैं कहां कहां गया। शुरू हुई यात्रा, पत्थरों के बीच वो पत्थर पड़ा था, वो वहां से बाहर उठता है और जैसे उठने लगता है अहंकार भरता है। ये कहानी मनुष्य की कहानी है। जैसे ही थोड़ी उसको सफलता मिलती है, जरा सा नाम होता है, जरा सा सबसे हट के जाता है, ऊपर उड़ने लगता है, अहंकार भरने लगता है अंदर ही अंदर। और जो दूसरे होते हैं उनमें भी कुछ होता है, उनमें ईर्ष्या भरती है, कोई उससे घृणा करने लगता है, अब तक तो दोस्त था पर दोस्त ही आगे जा रहा है, घृणा, कोई उसका विरोध भी करता है, यहां बैठे बैठे क्रिटिसाइज करता है, और ये भी अहंकार से भरता है, जाता है जाता है, और जो बीच में आता है उस समय उसको फोड़कर तोड़कर आगे जाता है। और यहां जो हुआ वो उन्होंने तो देखा नहीं, वो उसी को पता है, और जब आके बताता है तो कुछ और सुनाता है, जो हुआ वो नहीं सुनाता है। कहां जा रहे हो? हम वहां जाके आए। वहां अच्छा ये किया वो किया होगा। वहां जाके क्या कर रहे थे? झाड़ू पोछा। कहां जाके आए? विदेश जाके। अच्छा विदेश, विदेश कर क्या रहते फिर उधर? वो मत पूछो। तो व्यक्ति जो सत्य है उससे थोड़ा छेड़छाड़ करता है। सत्य के साथ व्यक्ति हमेशा तीन काम करता है। एक, उसको दबा देता है, सप्रेस। दूसरा, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर उसको बताता है। और तीसरा, उसकी थोड़ी सी मरम्मत करता है, मॉडिफाई करता है, थोड़ा बदल देता है, उसको तोड़ मोड़ करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, वैसे नहीं बताता जैसे वो था, थोड़ा सा उसमें परिवर्तित कर देता है। तो ये जो पत्थर की कहानी है साथियों के पास रहकर ऊपर उठने की, अहंकार से भरने की, आगे बढ़ने की, फिर वहां जाकर फिर नीचे गिरने की और फिर उसको परिवर्तन करने की, अपने विवरण को, ये मनुष्य की कहानी है। हम भी ऐसे ही है, थोड़ी सी सफलता अहंकार से भर देती है, जबकि हमारा बल क्या है? संगठन। उबुंटू, उबुंटू का सुना था ना? सुनाया था। एक यूरोप का बहुत बड़ा फिलोसोफर अफ्रीका के जंगलों में जाता है और वहां जाकर उसको बड़ा दुख होता है, बेचारे आदिवासी लोग, आदिवासी बच्चे, शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, ना वहां पाठशाला है ना कुछ है, यहां पर भी शिक्षा का स्तर उठना चाहिए, शिक्षा का विकास होना चाहिए, ऐसा सोचता है। और फिर सोचता है ये गांव के बच्चे, क्यों ना इनकी एक रेस की जाए, और वो उनकी एक रेस, एक दौड़ रखता है। यहां पर बहुत सारे चॉकलेट रखता है और यहां पर झाड़, सबको खड़े करता है और कहता है भागो, जो फर्स्ट आएगा उसको ये सब कुछ मिल जाएगा, सारे थाल चॉकलेट्स के, मिठाइयों के, मिष्ठान के। और वो बच्चे क्या करते हैं पता है? सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते और साथ साथ भागते और साथ साथ पहुंचते हैं। वो कहता है ये क्या कर दिया आपने, ये तो उसके लिए था जो जीतेगा। और वो उत्तर देते उबुंटू, 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 उबुंटू। वो कहते ये क्या है उबुंटू? तो उसे पता चलता है उबुंटू उनकी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हम है, मैं हूं क्योंकि हम है, आई एम बिकॉज वी आर, मैं किस लिए हूं? क्योंकि हम सब है इसलिए मैं हूं। वो आदिवासी वो सोच रहा था इनको थोड़ा शिक्षा दी जाए, इनका उद्धार किया जाए, वो उनसे शिक्षा लेकर जाता है। तो सफलता अहंकार से ना भरे, सफलता आत्मा में अपने ही साथियों के प्रति हीन भावना ना लाए, सफलता चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो आध्यात्मिक सफलता ही क्यों ना हो, यहां तक कि अध्यात्म में व्यक्ति जब सफल होने लगता है उसकी स्थिति ऊंची उठने लगती है, तो कभी कभी साथियों के प्रति भी हीन भाव आ सकता है। तो इस मुरली में बाबा ने एकता के विषय में कहा है, कौन सी भुजाएं लगाओ, एकता और एकाग्रता की। दो भुजाएं पहले से, अब क्या बन जाओ, चतुर्भुजधारी, चतुर्भुजाधारी। दो भुजाओं से काम नहीं करो, ये दो भुजा और लगाओ। तो एक है एकाग्रता, एक है एकता। बाबा ने कहा एक है एक के है, एक है एक को प्रत्यक्ष करना है, ये काम करना है सभी को। तो क्या कहा इस मुरली में, शुरुआत से चालू करते क्या क्या सम्मान दिए। तीन विशेषताएं, तीन सम्मान, तीन चीजें छोड़नी है, और क्या क्या कहा। मुरली है 11/4/85 की, चली थी अभी अभी 12 तारीख को, जनवरी मास 2020। तीन सम्मान है शुरुआत में, कौन कौन से। पहला सम्मान आधार मूर्त, आधार स्वरूप, किसके आधार, विश्व परिवर्तन के आधार, विश्व सेवा के आधार, किसके आधार, समय संकल्प बोल कर्म, और किसके आधार, स्वयं के प्रति आधार स्वरूप, और किसके आधार, संगठन के आधार स्वरूप, और किसके आधार। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, इस मीटिंग में आना या इस संगठन में आना, अर्थात क्या समझना अपने आप को, क्या हो जाना, स्नेह के बंधन में बंधना, बांधना, एग्जाम्पल बन जाना, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाना। ये ऐसी पॉइंट है कि जो किसी भी मीटिंग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जाना, अर्थात बाबा ने कहा यह जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी का काम है। किसी भी मीटिंग में जाना, एक, किसी भी संगठन में जाना, छोटा संगठन हो कोई भी संगठन हो, यह समझना एग्जाम्पल हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और स्नेह में बंधना, स्नेह के धागे में, श्रेष्ठ संकल्प के स्नेह में बंधना बांधना। तो सबसे पहला मैं कौन हूं, आधार हूं। अब यहां प्रश्न आता है किस चीज का आधार, किसका आधार है, हम धर्म की धुरी है, हम प्रैक्टिकल में क्या समझना है, मैं आधार हूं किसका, विश्व कल्याण का, विश्व सेवा, वो तो कह दिया। मेरी जो स्थिति है वो आधार है, जब मैं हिलता हूं दूर दूर तक आत्माएं हिलती है, बहुत सूक्ष्म रीति से, भूकंप आने, भूकंप देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पुराने जमाने में भूकंप को भी देवता कहा जाता था, भूकंप देव आए हैं, अब उसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, यज्ञ नहीं करेंगे तो भूकंप देव फिर आएंगे। मेरी स्थिति आधार है, मैं यहां हूं। इसके पहले भी कहा था हमेशा क्या समझना, मैं इस विश्व का केंद्र बिंदु हूं, सेंटर पॉइंट हूं इस यूनिवर्स का, ये सारी कायनात मुझ पर निर्भर है। मैं जब हिलता हूं तो कितनी चीजें, कितनी आत्माएं हिल जाती है, और हमारे संकल्प जब हिलते हैं तो कितनी सूक्ष्म बातें हो जाती है, क्योंकि हमारे कर्म जो है उसका आधार संकल्प, भावनाएं, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, सब कुछ अंदर जो हो रहा है उससे बाहर कर्म निर्माण हो रहे हैं। यहां कुछ हिलेगा तो यहां कुछ हिलेगा, कर्म और कर्म सारे विश्व को प्रभावित करेंगे, और सारा संसार एक प्रकंपन का समंदर है, सारा संसार प्रकंपन ही प्रकंपन है सब जगह। कुछ थोड़ी सी बहुत आत्मा है जिनके शक्तिशाली प्रकंपन से संसार टिका हुआ है, तो हमें श्रेष्ठ प्रकंपन संसार में फैलाने, इसके लिए मेरी स्थिति इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ब्राह्मण जीवन में स्थिति, वस्तु आएगी वस्तु चली जाएगी, सेवा है आज सेवा है कल नहीं रहेगी, आज है कल चली जाएगी छीन ली जाएगी गुम हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। स्थिति का आधार सेवा नहीं है, स्थिति श्रेष्ठ है अपने आप सेवा होती रहेगी, श्रेष्ठ स्थिति से सेवा करो, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो मेरी स्थिति आधार है विश्व का, और हम किस बात का आधार है? यज्ञ के आधार स्तंभ है, हम हिलते हैं तो यज्ञ हिलेगा। यज्ञ की वो आत्माएं हैं, यज्ञ को वर्तमान में शक्तिशाली प्रकंपन की आवश्यकता है, ऐसी योगी आत्माओं की आवश्यकता है जो अचल अडोल खड़े हैं, उन्हीं के आधार पर खड़ा है यह यज्ञ। सूक्ष्म शक्तियां चाहिए यज्ञ को, और वो संकल्पों से आती है। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, श्रेष्ठ संकल्पों की भाई बहनों से मुलाकात क्या होती है? सिद्धि होती है, सिद्धि। श्रेष्ठ संकल्प, बहुत श्रेष्ठ संकल्प, बहुत शक्तिशाली संकल्प अगर किया जाए तो कैसे भी करके वो संकल्प पूरा होता है। जैसे दिखाया है, इसके पहले भी सुनाया था, एक बच्चा बीमार है, उसको दिल की कोई बीमारी है जिसको ऑपरेशन की आवश्यकता है, एक डॉक्टर है, उस तक तो पहुंचना ही कितना मुश्किल है, और वही उसका ऑपरेशन कर सकता है। बिचारी माँ अकेली है, कहीं दूर घर है, आसपास कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, छोटे मोटे अस्पताल में दिखाया, लोगों ने कहा वहां लेके जाओ, वहां हो सकता है, ऐसी स्थिति है। और वो माँ क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, बस संकल्प कर रही है और भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए दिखाई है। उसी समय दिखाया है एक डॉक्टर जो बहुत बड़ा डॉक्टर है और जिसको अभी एक इनाम मिलने वाला है, और इनाम लेने के लिए वो फ्लाइट से जा रहा होता है, पर फ्लाइट में तकनीकी कुछ दिक्कत होती है तो फ्लाइट को बीच में ही क्रैश लैंड करना पड़ता है, लैंड करना पड़ता है, फ्रैश लैंड होता है और नेक्स्ट फ्लाइट बहुत देरी के बाद है, बहुत देर के बाद है। तो वो सोचता है कैसे करूं, पहुंचना तो इतना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड लेना है, बहुत बड़ा अवार्ड है जो मिल रहा है उसको लाइफ टाइम का की साधना का, पर यह व्यक्ति नास्तिक है, इसे भगवान और ये सब में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसके विश्वास है पुरुषार्थ में, मेहनत में, बाकी सब चीजें ढकोसला है, फालतू है। वहां से सोचता है कैसे पहुंचू, सोचता है टैक्सी लेके जाता हूं, कम से कम 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, टैक्सी लेता है, टैक्सी चालू होती मौसम और खराब होता है, एक जगह रुकता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, हालत खराब, वहां एक खंडर जैसा घर है, घर में ठक ठक करता है, अंदर जाता है, वो कहती है आइए अंदर बैठ जाओ, कहते हैं मुझे थोड़ी देर रुकना है, तो रुकता है, वो देखता है वो माता प्रार्थना कर रही है और धोनी की बातें होती है, वो कहता है ये सब प्रार्थना वगैरह ये सब कमजोर व्यक्तियों की निशानी है, भगवान प्रार्थना है। तो वो कहती है कि आप जो भी कहो पर भगवान मेरी सुनेगा जरूर। वो फिर अपने बेटे की कहानी सुनाती है, मैं उस डॉक्टर की तरह उस तक लेके जाना है, तब उसे आश्चर्य होता है वो तो मैं ही हूं, और किसने मुझे यहां लाया, उसके संकल्प ने, संकल्प में इतनी पावर है कि असंभव लग रहा है ये हो ही नहीं सकता, और कोई संकल्प कर ले तो सारी चीजें उसके संकल्पों के अनुसार बदलने लगेगी, इतनी पावर है संकल्प में। केवल वो संकल्प बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत शुद्ध संकल्प, निस्वार्थ होना चाहिए, सच्चे दिल से किया हुआ होना चाहिए, उसमें जरा भी छल कपट अगर होगा तो सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए भक्तों का भी दिखाया है ना, कितने शुद्ध संकल्प करते थे और वो पूर्ण होते थे। तो बाबा ने कहा संकल्प की सिद्धि होती है। ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है, इस पर काम करके देखना है। शक्तिशाली संकल्प करो और फिर देखो क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो हम आधार है संसार के, हम आधार है। हम हिलेंगे तो संसार हिलेगा। हमारे अंदर व्यर्थ, संसार में व्यर्थ, इधर विकार तो उधर विकार। हम अलबेले तो संसार अलबेला। इसके लिए हम टाइम वेस्ट करते रहे दिन भर तो क्या होगा, वैसे ही संस्कार फैलेंगे। और हमें कोई ना कोई देख रहा है, हमेशा देख रहा है ये क्या करता है। हमने देखा है कुछ कुछ पेशेंट्स, माताएं एडमिट होती है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, कुछ उनको तकलीफ होती है, पर जो ज्ञान में है कितना उनको ध्यान रहता है, मुरली का लिखने का, सोमान लिखने का, मुरली पढ़ने का। कितने तो पेशेंट है वो पूछते भी नहीं आज की मुरली है क्या, भी किए ना, पढ़ते हैं ना पूछते है। ज्ञान चर्चा का तो हम आधार है। कई सारी बातें हम सिखा कर चले जाते हैं दूसरों को बिना कुछ कहे, केवल हमारी धारणा ही, धारणा ही दूसरों को कितनी बातें सिखा देती है। तो हम आधार है। दूसरा सोमान उद्धार, उद्धार करना अर्थात उद्धार, उद्धार शब्द का अर्थ क्या है, मुक्ति। उद्धार अर्थात मुक्ति। वास्तविक हिंदी शब्दकोश में अर्थ जो है वो है मुक्त करना, तारना, उद्धार, बेड़ा पार, उसको मुक्त कर देना। तो हमें स्वयं का उद्धार करना है और दूसरा का, दूसरों का भी उद्धार करना है। उद्धार अर्थात सेवा करना, मुरली में कहा है। सहयोग देना, सहयोग थोड़ा सा कम ढीला शब्द है उद्धार के आगे, उद्धार थोड़ा सा बड़ा शब्द है, उद्धार करना किसी का। तो हमें उद्धार करना है, उसके लिए हम, हमारा खुद का बेड़ा गर्त ना हो, हम उभरे हुए हो, बाहर हो, तो ही दूसरों की मदद की जा सकती है। हम ही खुद मदद की गुहार लगा रहे तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे। दुखियों के साथ हम ही रो रहे तो उनको कैसे दुखों से दूर करेंगे। तो हमें उद्धार करना है। और तीसरा उधार, उदार, उदार का तो हुक्म ही नहीं है, बोला ना कल परसों। तो उदार, उदार अर्थात बड़ी दिल, फ्राक दिल, बड़ी दिल, विशाल दिल, उदार बेहद का दिल। उदार अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना, सेवाओं का आधार उदारता है। कितना दिल उदार है। संसार में, इतिहास में जितने महान आत्माएं हुए हैं, उन्होंने उन सब के लिए अच्छी भावनाएं रखी है जिन्होंने उनको इतना सताया, इतना सताया, और उनके पास ये अवसर भी था ये सिद्ध करने का कि जो व्यक्ति मुझे सता रहा है वही गलत है, अगर मैंने कह भी दिया तो उसको बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है। ये भी अवसर उनके पास आया, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया ये कहकर कि आखिर है तो वो भी तो मनुष्य ही ना, मैं उस भगवान के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। ये भाव, चाहे कोई कैसा भी है पर है तो वो भी मनुष्य। यहां तो हम उसकी भी बात नहीं कर रहे, वो ब्राह्मण है, हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं। सारा संसार को अगर देखा जाए, हर एक है तो मनुष्य ना, कितना ही उसने कुछ भी किया होगा पर है वो फिर भी मनुष्य। इसलिए हमें किसी के प्रति भी नफरत, घृणा, ये सब हमारे मन में नहीं आ सकता। उदार, बड़ा, और जो केवल अपने बारे में सोचता है, जैसे उस पत्थर की कहानी सुनाई, उसका ध्यान केवल अपने ऊपर है, अपने अहंकार की तृप्ति पर है, दूसरों को क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। उदारता, बड़ी दिल, साफ दिल। तो ये तीन समान दिए, मैं आधार मूर्त हूं, मैं उद्धार मूर्त हूं और मैं उदार चित हूं। उदार चित में तीन चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन सी? ईर्ष्या, घृणा और तीसरा क्रिटिसाइज। ईर्ष्या क्या करती है? खुद परेशान दूसरों को परेशान। घृणा, खुद गिरते दूसरों को गिराते। और क्रिटिसिज्म, कोई जा रहा है पीछे से धक्का मार देना, गिरा देना और फिर कहना सॉरी, ऐसे ही हो गया ना। किसी को कहना हमारे यहां दावत है प्लीज आइए ना, हमारे यहां बहुत अच्छी दावत है आप आइए, इनविटेशन दिया, सब कुछ किया, दावत में बुलाया, भोजन खिलाया और फिर कहा कि 2000 रुपए बिल हो गया। फिर कहना कि इतना बिल हो गया। पहला बताया ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या करती है? छोटी अग्नि है। क्रोध बड़ी अग्नि है। ईर्ष्या जलाती है, ईर्ष्या बेचैन करती है। और ईर्ष्या होती क्यों है? पहला प्रश्न तो ये है, क्यों ईर्ष्या होती है? कंपटीशन है, तुलना करते हैं इसलिए। और कंपैरिजन, तुलना क्यों? क्या ये हमारा स्वभाव है? फिर इतनी गहराई में क्यों छिपी है? बहुत गहरी है। जरा सा किसी को हमसे थोड़ा अच्छा मिल जाए, कोई गुण, कोई विशेषता, कोई साधन, कोई हुनर, तुरंत ईर्ष्या आती है। क्या, क्यों? ईर्ष्या का सबसे गहरा कारण क्या है प्रभाकर भाई? क्यों होती है ईर्ष्या? कोई ऐसा संसार में शायद ही कोई होगा जो कहेगा मैं ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हूं। क्रोध से बोल सकता है, लोभ से बोल सकता है, बाकियों से, पर ईर्ष्या, ईर्ष्या की अग्नि वर्षा, ईर्ष्या की वर्षा। एक मां को ईर्ष्या होती है क्या? मेरी बेटी आगे जा रही है, हाँ हो सकती है, वो भी हो सकती है, हाँ स्वप्न वाली। तो ईर्ष्या का सबसे गहरा कारण है अंदर का खालीपन। आत्मा अंदर से अतृप्त है, असंतुष्ट है अपने आप से ही। उसका कारण बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बाहर तो बस एक व्यक्ति ट्रिगर बन गया जिसने उस ईर्ष्या को बाहर लाया, और ईर्ष्या तो पहले से ही थी अंदर, अब किन्हीं कारणों से वो दबी थी, ये व्यक्ति ने उसको कारण बना जो बाहर आई। तो बाबा ने कहा ईर्ष्या जो है वो छोटी अग्नि है। ईर्ष्या खुद परेशान और दूसरों को भी परेशान। केवल परेशान नहीं, जिससे ईर्ष्या होती है क्या क्या करते है? सबसे पहले तो कोई टॉन्ट करेंगे, उसको कुछ बोलेंगे, जिसको ईर्ष्या होती है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, फिर उससे काम नहीं हुआ तो षड्यंत्र करेंगे, उससे काम करेंगे, चुगली करेंगे, गिराएंगे उसको, इधर उधर की बातें, व्यंग बान, उपहास के तरकश में व्यंग के बान भरे पड़े। कुछ ना कुछ तो करेंगे उसको गिराने के लिए। और ईर्ष्या में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है। ईर्ष्या करने वाला मन कभी योग नहीं कर सकता, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता, धारणाएं होगी नहीं, सेवाएं जो करेगा उसमें भी ईर्ष्या। इधर उधर 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 करते करते ही ब्राह्मण जीवन बीत रहा है। कोई बस मिल जाए, कोई मिले बैठे और चर्चा चालू। कौन सी चर्चा? परचिंतन की। इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है। ज्ञान के की चर्चा की तो काल है, जैसे बहुत कम आत्माएं ऐसी है जो ज्ञान की बैठ चर्चा करती है, या उनको चिंतन है आज की मुरली में ये था, आज की मुरली में वो शब्द था, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, इसका क्या राज है, उसका क्या राज है। ये ज्ञान ईर्ष्या से भर जाती है आत्मा, और अंदर खालीपन है। ज्ञान योग है ही नहीं, वहां खाली है अंदर से पात्र, इसलिए फिर दूसरा थोड़ा भी आगे जाए उसको फिर नीचे लाने के षड्यंत्र चालू हो जाती है, योजनाएं। दूसरा घृणा, घृणा अर्थात नफरत। नफरत की परिभाषा अंग्रेजी में है सेटल्ड एंगर इज कॉल्ड हेट्रेट। जो क्रोध लंबा समय तक टिका और अब जम गया है, अंदर अंदर समा गया है क्रोध, जैसा किसी के प्रति बहुत क्रोध है, उसने हमारे साथ बहुत बुरा बुरा किया है और वो इतना अंदर हमने समाने दिया कि अब वो नफरत बन गई है। नफरत अर्थात उस व्यक्ति को उसके बाद अगर कोई आए, हम अगर किससे नफरत करते और कोई आए उसकी महिमा करने लगे तो क्योंकि इतनी निगेटिविटी भरी है उसके प्रति कि उसने अच्छे से काम, अच्छे से अच्छे भी कोई सेवा की या काम किया पर उसमें से कोई नुक्स, कोई तो उसको मीन मेक, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे उसमें से कि ये गड़बड़ है उसमें, बाकी सब तो ठीक है पर ये ठीक नहीं है। तो नफरत जो है, और वो नफरत वाला व्यक्ति योग नहीं कर सकता है। कैसे योग करेंगे? योग तो पॉजिटिविटी की हाईएस्ट स्टेज है। खाली बैठ गए बाबा के सामने और वो ये कर रहे हैं, उसको योग नहीं कहा जाता है। घृणा, और तीसरा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म अर्थात टॉन्ट, यंगबान, क्रिटिसाइज करना, विरोध करना। बाबा ने इसके लिए तो क्या कहा, कोई चल रहा है उसको गिरा देना, हंसी में किसी को कुछ कह देना या फिर सीरियसली कह देना। सीरियसली तो ठीक है, हंसी में भी कह देना। हंसी में भी टॉन्ट करते वो ज्यादा हर्ट करता है। और बाबा ने कहा जिसने हर्ट किया है वो उसको भूलते नहीं है हम, जिसने चोट दी है ना उसको चिंतन चालू रहता है उसके प्रति, उसने ऐसा कहा। तो वो हर्ट भूलता नहीं है व्यक्ति को, जिसने कुछ कहा था, कितने साल बीत गए पर उसके वो वाक्य अब तक भूले नहीं है। जबान के घाव नहीं मिलते, भरते नहीं है, तलवार के भर जाते, चोट लगी भर गया, जबान ने जो घाव दिए। वो तो ही भरे नहीं है अभी तक, जिसने कितने 10 साल हो गए उस व्यक्ति के जीवन की हर बात भूल चुकी है पर उसने हमको ऐसा कहा था। उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, लंबा समय निगेटिव चिंतन करते 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 वहां तक आ गया है कि अब पूरा निगेटिव ही बन गई है माइंड। और उसमें बहुत सारे, जब हम सोचते हैं किसी के बारे में निगेटिव, ठीक है, हमको ऐसे ही प्रमाण मिलते जाएंगे जो निगेटिविटी को बढ़ाते जाएंगे अपने आप, और पक्का होते जाएगा। जैसे पति को संशय है पत्नी पर, हो गया संशय, उसके बाद में उसके अपने आप सारे प्रमाण मिलते जाएंगे अपने आप कि ऐसा है, और ऐसी चीजें होती जाएगी क्योंकि पहले से जो है ना बेस बना लिया है। वैसे ही निगेटिविटी का भी है, पहले से सोच के रखा ये व्यक्ति जो है ना ये बहुत ऐसा है, पहले से सोच के रखा, उसके बाद जो कुछ होते रहेगा वो ऐड होते जाएगा उसमें निगेटिव। और होता भी ऐसा है क्योंकि हमने अपनी धारणा, अगर वो वैसा ही होता तो सबको वैसा लगना चाहिए था। कुछ ऐसे लोग हैं 2-3 उनके लिए वो बहुत अच्छा है उनके लिए, हमारे जो हिसाब। जैसे एक व्यक्ति है जो मेरे से बहुत खराब व्यवहार करता है पर बाकी सबसे अच्छा व्यवहार करता है, मैं कहता हूं ये अच्छा नहीं है, ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे हिसाब किताब का है, सबके साथ वो अच्छा है, सबके साथ वो अच्छा है। मेरी जैसे मेरी जो बहू है ना मेरे साथ ही व्यवहार ठीक नहीं करती, बाकी सबसे ठीक व्यवहार करती है। अभी सास की ये कंप्लेंट है तो ये प्रॉब्लम उस व्यक्ति का नहीं है, ये संबंध और हिसाब किताब, तुम्हारे साथ संबंध है इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, और जिसके साथ अच्छा नहीं है उसके प्रति हमने इतनी निगेटिव भर के रखी है, इतनी निगेटिविटी भर के रखी है कि वो निगेटिव बढ़ते बढ़ते क्रिटिसिज्म, फिर उसके प्रति कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर गए। बाबा ने कहा धक्का दिया, गिरा दिया, हंसी में कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, और कुछ भी कह सकते हैं व्यक्ति जब, और ये कहने के लिए प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग करके आते, ऐसे नहीं बोलते थे हंसी मजाक में, हंसी मजाक में भी बोलने के लिए प्लानिंग होती है। हाँ, मुरली के पॉइंट के साथ, मुरली के पॉइंट के साथ, जैसे एक भाई था एक सेवा केंद्र पे, उसने अनुभव सुनाया, उसने कहा मैंने क्लास कराई, वो भाई ने क्लास कराई, ठंड थी, और क्लास कराने के बाद दूसरे दिन मैं बैठा था तो हीटर लगा हुआ था, तो एक दूसरा भाई आया, बोले क्लास तो बहुत कराते हो प्रकृति जीत और हीटर चाहिए कमरे में। बोले अब क्या करूं। प्रकृति जीत तो बहुत बनते हो, ये जैकेट वैकेट बहुत पहनते हो, कमाल है तुम्हारी भी, प्रकृति चित बनते जैकेट क्यों चाहिए तुमको, हम क्या उत्तर दे, उत्तर क्या दे, लक्ष्य जो था बोलने वाले का उसमें कौन सी भावना समाई थी, उसमें शुभ भावना तो है ही नहीं, उसमें लक्ष्य ही है सामने वाले को पूरा एकदम होती है ना ड्रिल मशीन उसके इधर रखना और घुमाना, ये था टारगेट ड्रिल मशीन से, ताकि वो आ आ चिल्लाए थोड़ा सा। मजा आता है ना निंदा करने में, क्रिटिसाइज करने में, कोई दुखी होता देख के कितनी आनंद होता है। जैसे चोर, वो बताया था ना, वो टेंशन में है तो क्या करता है, मंदिर के बाहर जाता है, चोर नहीं कोई व्यक्ति बहुत टेंशन में है क्या करता है, मंदिर के बाहर जाता है, चप्पल रखी हुई सब इधर उधर कर देना, और फिर देखना कितना मजा आता है, लोग ढूंढने, अरे मेरी चप्पल मेरी चप्पल, हम इतने दुखी है लोग इतने सुखी, हो जाओ परेशान सबके सब, ढूंढो अपनी अपनी चप्पल। इधर उधर करके रख देना और फिर खुशी होती है, हम ही परेशान रहे हमेशा, कमाल है, दुनिया वाले भी तो परेशान हो, इतने खुश रहते सबके सब। घृणा नफरत और क्रिटिसिज्म, किसी सब की क्रिटिसाइज हमको करना ही नहीं है किसी को भी, और दूसरी बात क्रिटिसाइज करेंगे तो व्यक्ति बदला लेता है, किसी ना किसी रूप से एक दिन बदला जरूर लेगा, किसी को भी क्रिटिसाइज करो बदला तो लेगा जरूर, जबरदस्त बदला लेगा वो भी, और इतना सूक्ष्म लेगा कि हमें भी नहीं समझ में आएगा कि ये वो था, ये उसकी वजह से था, इसके लिए छोड़ दो। तो ये तीन चीज बाधा है बाबा ने कहा। उसके बाद में क्या कहा, ये था तीन समान, तीन बाधाएं, उसके बाद में और तीन सोमान दिए एक जगह पर, एक है तुम गुलाब हो, रूहानी गुलाब, ये गुलदस्ता है, एक गुलाब की इतनी खुशबू होती तो इतने गुलाब गुलदस्ता की कितनी खुशबू होगी। एक दूसरा बताया था उसी में तुम सितारे हो, तुम एक एक सितारे में दुनिया है, उन सितारों में दुनिया नहीं है, तुम में दुनिया है। ये भी कितना अच्छा सोमान है कि मुझ में सारी दुनिया समाई हुई है, एक सितारे में दुनिया अर्थात मुझ में सारी दुनिया समाई हुई है। वास्तव में हम एक एक आत्मा में कितनी सारी दुनिया है, पूरी दुनिया समाई हुई है मुझ में। एक अंग्रेजी कवि कवियत्री भगवान के लिए लिखती है, द अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी एंड थाउ वर्ट लेफ्ट अलोन एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन दी। अंग्रेजी कवियत्री है इमिली डिकिंसन, वो लिखती है कि हे प्रभु, दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी, धरती सूरज चांद सितारे सब कुछ खत्म हो जाएगा और केवल तू अकेला बचेगा, बस दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, केवल तू, तुझमें फिर भी सब कुछ समाया हुआ होगा। एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन दी, तेरे में फिर भी सब कुछ समाया हुआ होगा। तो ये सम्मान कितना अच्छा है कि सारी दुनिया मुझ में समाई हुई है। इसका उदाहरण यादगार भक्ति मार्ग में मुंह में गोला, तो वो हम ही है। मैं पूरी सृष्टि मुझ में समाई हुई है। आई एम कंडेंस्ड सृष्टि। स्वामी विवेकानंद ने अपनी उसमें लिखा है, जब वो पूरी भारत की यात्रा की उन्होंने और लास्ट में कन्याकुमारी पहुंचे, वहां जो पत्थर है, ये पानी था बीच में, यहां पत्थर था, वो कूद गए भाग तैरने लगे। यहां एक सन्यासी तपस्या कर रहा था, वो कहते कहां जा रहे हो, मरना है क्या, इतना पानी उफान पर है, बाढ़ आ रही है, तुम कहां जा रहे हो ऊपर। वो तैरते तैरते जाते यहां बैठते, और यहां बैठने के बाद वो जो पत्थर अभी भी है वहां, विवेकानंद रॉक उसको कहते हैं, वहां बैठने के बाद उन्होंने ये सारी जो भारत की यात्रा की, सारा कुछ जो कुछ देखा, जैसे उनके सामने आया, और उन्होंने एक वाक्य लिखा, आई एम कंडेंस्ड इंडिया। कंडेंस्ड अर्थात क्या कहेंगे उसको, घनी सारभूत नहीं, कंडेंस्ड अर्थात पानी की बूंदे, ये हो जाती है ना कंडेंस, और ये बन जाती है बुलबुला, नहीं क्या कहते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं जो बूंद आती है, नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, शबनम, हाँ शबनम, तो शबनम बन जाती है ना उसको, वो कैसे कंडेंस्ड हो जाती है, वेपराइज। उन्होंने लिखा था आई एम कंडेंस्ड इंडिया, जैसे कि ये सारा भारत अब मुझ में समाया हुआ है, तो आई एम कंडेंस्ड वर्ल्ड, सारी दुनिया मुझ में समाई हुई है। तुम एक एक सितारे में क्या है, दुनिया समाई हुई है, उस सितारों में दुनिया नहीं है, मुझ में सितारे, मुझ सितारे में दुनिया। ये सेकंड सम्मान। तीसरा क्या कहा, अर्जुन तुम क्या हो, अर्जुन हो, ओटेसो अर्जुन, और माइक के लाइट हाउस बनकर बोलो, माइक के पीछे माइट बन के बोलो, जैसे कि अवतार अवतरित हुआ है अभी अभी, और अवतार की स्थिति कैसी होती है, बहुत पावरफुल स्थिति होती है, अभी अभी आया अवतार बोला और अवतार गया ऊपर, लोग कहेंगे कहां चले गए। तो ये तीन सम्मान दिए है। फिर उसके बाद में और एक काम दिया, ये चीज याद रखो, ना समस्या स्वरूप बनेंगे ना समस्या में हलचल में आएंगे। समस्या को क्या बन के खा जाओ, अभी खा के आ रहे क्या, तो समस्या स्वरूप नहीं बनना, क्या बनना, समाधान स्वरूप बनना। एक दो तीन सम्मान है यहां पे जिसका हरेक को बड़ा गहराई से अभ्यास करना है, वो ये कि इस दुनिया की कोई भी समस्या का समाधान ऐसा नहीं जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास इस संसार के हर समस्या का समाधान है, पहले से सोच के रखना। इस दुनिया की हर समस्या का समाधान मेरे पास पहले से ही है, मतलब वरदान ही दे रखा है पहले से भगवान ने, हर समस्या का समाधान मेरे पास है, मैं बुद्धि का सागर हूं, मैं बुद्धिमता का सागर हूं, तीक्ष्ण बुद्धि, चतुर बुद्धि, त्वरित बुद्धि, तुरंत उत्तर, कुशाग्र बुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट बाबा ने कहा है, रिफाइन इंटेलेक्ट, कितने प्रकार के इंटेलेक्ट बाबा ने कहे हैं, जरा इसकी लिस्ट बनाना, अभी अभी बनाओ थोड़ी सी, पर लंबी वाली बाद में बनाना। रिफाइंड इंटेलेक्ट मूल्यों में जो आता है वो बताओ, ईश्वरीय बुद्धि, दिव्य बुद्धि, निश्चय बुद्धि, पारस बुद्धि, नहीं नहीं पॉजिटिव वाला पहले बताओ, स्वच्छ बुद्धि, विशाल बुद्धि, सरल बुद्धि, साफ साफ बुद्धि, पवित्र बुद्धि, प्योर बुद्धि, शालीन बुद्धि, श्रेयुड बुद्धि, श्रेयुड श्रेयुड कुश्याग्र बाबा ने तो नहीं कहा, स्थिर बुद्धि, बेबी बुद्धि, वो निगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव वाला पहले। हाँ, ये जो चीज है ना, ये बहुत अच्छा सम्मान है। मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर हीन भावना है, समस्या आती है तो भागते हैं। मैं बुद्धिमान हूं, मैं होशियार हूं। छोटे बच्चों को तो ये हमेशा सिखाना चाहिए बचपन से कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं होशियार हूं, हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, हर समस्या का समाधान मेरे पास है, हर कारण का निवारण मेरे पास है, हर परिस्थिति का निराकरण मैं कर सकता हूं, निदान, उपचार, निर्वहन। हिंदी में एक शब्द है निर्वहन, एक होता है निर्वहन करना, वो दूसरा, पर निर्वहन अर्थात समाप्ति, ये दूसरा अर्थ है निर्वहन का। हर विघ्न का निर्वहन करने वाला मैं हूं। ये प्रॉब्लम्स परिस्थितियों में काम आने वाले सम्मान है। मैं बुद्धि का सागर हूं, मेरे पास बुद्धिमत्ता है कि मैं अपनी बुद्धि के चातुर्य से इसको ठीक करूंगा। तो ये कहां थे, तीन चीजें, पहला बताया गुलाब, सितारा, अर्जुन, और ये माइक का बता रहे थे, माइट हाउस लाइट हाउस बन के बोलो, अवतार हूं ये समझो। फिर उसके बाद में मुरली में और तीन विशेषताएं हमें, कौन सी तीन विशेषताएं, निर्विकल्प, निर्विघ्न और निर्विकारी। निराकारी नहीं है, सब व व से है, नहीं तो न से तो बहुत है। निर्विकल्प, निर्विघ्न और निर्विकारी। निर्व्यर्थ भी बोला एक जगह, एक जगह निर्व्यर्थ भी है, निर्व्यर्थ, ये सब बाबा के बनाए हुए शब्द है। निर्व्यर्थ, निर्व्यर्थ अर्थात कोई व्यर्थ नहीं, निर्विघ्न अर्थात ये नहीं कि विघ्न ही नहीं आए, विघ्न आएंगे और ज्यादा आएंगे, विघ्न तो हम घिरे हुए हैं, 24 घंटे विघ्न ही विघ्न है, पर उनका असर मुझ में नहीं होगा। ऐसा तो जिस जीवन, जिस व्यक्ति के जीवन में विघ्न नहीं, वो कभी उन्नति नहीं करता है, वो तो बैठे रहता है वैसे के वैसे। विघ्न तो उनके मार्ग में आएंगे जो चंद्रगुप्त बनने वाले हैं, जो पूरे अखंड भारत का सम्राट बनने वाले, उनमें विघ्न आएगा। जो पदाति सैनिक है उसको काहे के विघ्न, बैठे काहे, कैसे विघ्न आएंगे, जितनी महान आत्मा है उतने महान विघ्न, क्योंकि महान आत्मा को ही परखा जाता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का संवाद है, सुना होगा सबने, वीडियो है उसकी, भेजी भी थी, नहीं वो नहीं, चंद्रगुप्त और चाणक्य का संवाद है, उसमें वो पवित्रता ब्रह्मचर्य की बातें है उसमें, वो वाला संवाद। तो उसमें चाणक्य उससे क्या कहता है, वो कहता है क्या स्त्री और पुरुष मिले ये अच्छी बात नहीं है आचार्य, वो कहता है ये उनके लिए ठीक है जो पदाति सैनिक बनने वाले हैं, जो अखंड भारत का निर्माण करने वाले उनके लिए विष है ये उनके लिए नहीं है ये मार्ग, बुराई कुछ भी नहीं है, काम विकार ठीक है उनके लिए, सब ठीक है, बेचारे और पागल हो जाएंगे नहीं तो, पर जिन्हें अखंड भारत का निर्माण करना है, जिन्हें महान बनना है, जिन्हें श्रेष्ठ बनना है, उनके लिए ये विष है। वो संवाद है ना, वो भेजा भी था, आधा घंटा नहीं, 10-15 मिनट का है, छोटा सा बट बहुत पावरफुल संवाद है, बहुत पावरफुल संवाद है। तो निर्विघ्न, निर्विघ्न अर्थात नहीं कि ये विघ्न आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं, ये निर्विघ्न नहीं है, विघ्न आए सामना करें, उनसे हम सीखे और आगे बढ़े। हर बार विघ्न आएगा, नए रूप में आएगा, उससे हर बार सीखना है, क्योंकि सीता खड़ी है, रावण आया उठा के लेके गया, अभी सबको नेक्स्ट सीन, सेकंड सीन, सीता खड़ी है, फिर से रावण उसी वेश में आया, तो पहचान तो लेगी ना, एक बार तो धोखा खा लिया था सीता ने, दूसरी बार थोड़ी ना धोखा खाएगी। तो रावण की स्ट्रेटेजी क्या है अब वो हर बार ब्राह्मण बन के आएगा क्या, वो तो कुछ और बन के आएगा अब, एवरी टाइम न्यू। थर्ड सीन ले लो, सीता खड़ी है, दूसरी बार क्या बन के आया, दूसरी बार कोई जोकर विकर बन के आया था, फिर भी से फंस गई, तीसरी बार तू जोकर बन के थोड़ी ना आएगा सीता तो वही है, हम तो वही है, पर माया हर बार, एक बार रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके आएगा, एक बार कुछ, एक बार कुछ, एक बार कभी स्त्री का रूप धारण कर लेगी, कभी कुछ, हर बार नया रूप। ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक ही रूप, फिर तो कोई वो कैसे फंसाएगा, वो उसका तो पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। एक बार तो हमने परख लिया कि ये जो होता है ना, ऐसा होने के बाद, ये संकल्प आने के बाद स्थिति पूरी डाउन हो जाती है। अगली बार ध्यान रखें कि ये संकल्प बिल्कुल नहीं आने देंगे, पर वो संकल्प वैसा थोड़ी आएगा। वो रावण में जितनी नवीनता है उतनी ब्राह्मणों में आ जाए तो उद्धार हो जाए ना, तो हम में उसके जैसी नवीनता है ना, वो अथक, वो जितना थकता ही नहीं है, इधर ब्राह्मण थक जाते पर वो नहीं, जितनी अखंड ज्योति रावण की है उतनी हमारी नहीं है। उसका धैर्य कितना है, इतनी बार हार खाने के बाद में भी वो एकदम उठ के खड़ा हो जाता है। अगर इतना ब्राह्मण हार खा ले तो कहेंगे बहुत हो गया, माफ कर दो। हाँ वो है, और कोई कहते ये रावण हमारे जीवन से हटा दो, कोई ऐसा कहते ना, हाँ ये रावण को ही हमारे जीवन से हटा दो। अरे रावण हट जाएगा तो राम का क्या महत्व है क्या, रावण के बिना रामायण में? रामायण से राम हटा, रावण हटा दो, रावण जी क्या किया, गए, सब ठीक था, वन में गए, आ गए, खत्म। अरे रावण का तो पार्ट ही तब चालू होता है जब रावण की एंट्री हुई, तब है राम का महत्व, नहीं तो राम का तो कोई महत्व ही नहीं है। और हम प्रार्थना कर रहे बाबा इसको कहीं भेज दो दूसरा डिपार्टमेंट में, इसको कहीं और कुछ कर दो, देखो इसका कुछ किया जा सकता है, इसको मुझे यहां से भेज दो, या तो जहां अभी हो वहां एक रावण है, दूसरी जगह जाओगे वहां 10 रावण बैठे हैं खाने के लिए। ये फिर भी परिचित है, इससे एडजस्ट करना सीख लिया है 10 साल में इस रावण के साथ। वो जो नया रावण खड़ा है वहां पे उसका क्या करेंगे, वो अपरिचित रावण है। वो जो बताया था ना एक बार आकाशवाणी हुई, जितने अपने दुख है अपने दुख की पोटलियां लेके जाओ मंदिर में टांग के आ जाओ, और जो चाहिए फिर वो ले लेना वहां से। वो सूफी संत भी सोचता है, बहुत खुश होता है, भागता है मंदिर में, अपनी पोटली टांगता है, सबने अपनी अपनी टांगी हुई है, फिर सोचता है कोई भी ले सकता हूं, यहां तो बहुत छोटी छोटी दिख रही है। वो दूसरी लेने जाता है, फिर सोचता है पता नहीं कैसी होगी, ये अपने दुख तो फिर भी परिचित है, 10 साल से वही दुख है, 10 साल से वही आत्मा है, उसका स्वभाव भी पता चल गया है, वो ऐसा कहती तो ऐसा होता है, वैसा कहता है तो वैसा होता है। ये जो नया आएगा उसका तो कुछ खबर ही नहीं हमको क्या है, तो ये ठीक है। तो निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकारी, ये 3 चीजें। समस्या का बताया था, ना समस्या बनेंगे ना किसी के लिए, ना समस्या से घबराएंगे, समस्या आने दो, जितनी ज्यादा समस्या उतनी आत्मा और पावरफुल और शक्तिशाली, क्योंकि वो समस्या एक चीज तो करती है, हमें सिखा के जाती है कुछ ना कुछ, वो अनुभव से गुजर गए ना। इंग्लिश में कहते हैं माइंड विच इज स्ट्रेच्ड बाय न्यू आइडिया नेवर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। एक मन अगर उसको खींच लिया जाए, अब वो अपना पुराना शेप नहीं रिगेन करेगा, वो अब बड़ा हो गया है, तो समस्या। उसके बाद में और क्या कहा मुरली में, मनसा सेवा, मनसा सेवा के साथ 3-4 चीजें करो, 2 इंग्लिश चीजें 2 हिंदी चीजें, ट्रायल करो और यूज करो, अभ्यास करो हिंदी और व्रत लो। अभ्यास करो मनसा सेवा की, क्योंकि मनसा सेवा किसके जैसी है, वो जादू, जादू नहीं चुंबक की तरह है, और जादू ऊपर बोला है, ऊपर जैसे जादूगर होता है ना, वो जादू करता है, या ब्रह्मा का चित्र, अभी अभी ब्रह्मा, अभी अभी वो विष्णु कृष्ण, अभी भी तुम, अभी भी विष्णु महाराजन, ऐसा दिखे, ऐसा साक्षात्कार कराओ। तो यहां पर भी कहा मनसा सेवा सिद्धि होती है, यहां पे ट्रायल करो, यूज करो, अभ्यास करो, व्रत लो मनसा सेवा का, करके देखो क्या होता है, उस आत्मा को कुछ यहां से भेज के देखो क्या क्या होता है। और सबसे ज्यादा यही सेवा है, और ये सेवा तो रोज करनी है, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है, क्योंकि जो बड़ी सेवाएं होती है अगर उनको देखो तो उसमें इतनी हलचल होती है, आपस में टकराव कितना होता है आत्माओं का, ऊपर से दिख रहा है बहुत अच्छा है, ऊपर से दिख रहा है 500 नई आत्माएं कोर्स करने आ गई, 500 में से कितने टिके, कोर्स पूरा कितनों ने किया, 400 ने किया, 400 में से मुरली क्लास में कितने आए, 100, 100 में से 6 महीना कितना चले, 10, और अभी तो एक चल रहा है। ये जो थे, और हमने यहां पे क्या किया था, ये सेवा होने के बाद में कितना उसका ये किया था प्रोपोगंडा, इतनी सेवा हो गई। पर ये स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव स्टैटिस्टिक्स जो पहले की थी ना, अब उसमें कितने निकले, कितने हैं और क्या हो रहा है उनका, वो भी समस्या में है, वो भी दुखी है, कहता है पहले ठीक था, जब से आया हूं गड़बड़ चालू है सब, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो भाई ठीक नहीं, वो बहन ठीक नहीं, अब बाप बताओ क्या करना है। पावरफुल आत्माएं निकलनी चाहिए, हमको केवल वारिस क्वालिटी वाली आत्माएं निकलनी चाहिए, ऐसी तो बहुत कम निकलती है। वो डिपेंड करता है किस तरह से सेवा का बीज यहां बोया गया था, केवल फिगर की तरफ नहीं देखना है, इतना इतने हो गए, 1000 लोग आए, इधर 2000 लोग आए, इधर 5000 लोग आए थे, इधर 100,000 लोग आए थे, फिगर का क्या करना है, क्वालिटी चाहिए हमको। पर सारा फोकस किस पे है, और एक बात, दूसरी चीज वो तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीन प्रकार की सेवा है, एक तो जो ऑलरेडी क्लास में है उनकी पालना करना, जो बीके है, ब्राह्मण है, दूसरा जो छोड़ के गए उनको वापस लाना, और तीसरी सेवा है नए। वो इसमें ही आ गया, ये जो है, जो ब्राह्मण है उनकी सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो छोड़ के चले गए उनको वापस लाना। पर अभी वर्तमान में हमारा फोकस इधर कम है, कहां है ये जो नए है ना, बस ये आ जाए, इधर भर्ती हो जाए, फिर इनका क्या हो रहा है वो मत पूछो, ये इधर भर्ती होते रहे। भर्ती एक बार हो गए कि ये रूटीन हो गए। यहां जब अकेले थे तो वीआईपी थे, वीआईपी थे तो अलग कमरा, ये दिया वो दिया, अब बीके बन गए, अब क्या जा जिन्हें, जब भाई हो भाई हो, जो करना है हो जाओ तुम, अब मत पूछो, अब एडजस्ट करो। यहां थे तो आगे पीछे आगे पीछे, इधर चलो उधर चलो उधर चलो, इधर अलग कमरा, इधर वीआईपी, उधर थे तो वो बड़े वीआईपी रूम में, अभी तो जनरल में डाल दिया बीके बनने के बाद। सोच रहे यार इतने क्यों ज्यादा हम अंदर गए, सहयोगी होते तो कितना अच्छा होता, थोड़ा वो पालना मिलती वीआईपी वाली, अब वीआईपी पालना ही चली गई, फिर यहां से एंट्री करते इधर, अब सोचते कैसे कैसे बहाना बनाओ। कुमार बेचारे दुखी हो जाते हैं यहां पर, बहन जी कुछ काम देती है, शाम को देखती है कुमारों ने किया ही नहीं, क्यों नहीं किया, वो तो भूल ही गए। अब क्या बोले, अंदर से दुखी है। तो ये एक बात, और क्या था मुरली में, मनसा सेवा। हाँ, बाबा मन की स्थिति में चार चीजें देखते हैं, एक तो चित्र फोटो, बाबा हमारे मन की स्थिति का फोटो उसके पास है, एकदम कितना मेगापिक्सल होगा कैमरा उसका, एकदम एक्यूरेट, जरा भी उसमें ये नहीं, एक 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 पूरी झुर्रिया उसमें सारी दिखती है उसके फोटो में मन के, एक दूसरा टेप और उसकी कैसेट्स, मन की टेप की कैसेट है उसके पास, तीसरा वीडियो, चौथा टीवी, ये चार चीजें बाबा के पास है। किस क्या देखने के लिए, मन की स्थिति को देख लेता है। वैसे तो कहता है मैं थॉट रीडर नहीं हूं, मैं जानी जाननहार नहीं हूं, मुझे क्या पता तुम क्या कर रहे हो, बच्चों समाचार देना चाहिए, और यहां पे राज की बात बोल दी ना, सब पता है उसको, एक एक चीज का पता है, टीवी है, वीडियो है, लाइव टेलीकास्ट, पूरा कैमरा, सब कुछ है उसके पास, सब देख लेता है। इसका मन में ये चालू है, अभी कुछ ना कुछ आगे तूफान गड़बड़ की संभावना दिख रही है, अनिष्ट की आशंका। तो ये वाली बात भी है, तो भगवान सब कुछ जानता है, हम सबको इस दुनिया में सबको धोखा दे सकते हैं, दो को छोड़ के, एक अपने आप को और एक बाबा को, इनको हम धोखा नहीं दे सकते, बाकी दुनिया वालों को तो ऐसा घुमा सकते हैं वो याद करते रहेंगे, भगवान को नहीं छल सकते। और भी कुछ था मुरली में, वो तीन 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 चार तीन चार, हाँ हाँ, चमकता चेहरा, चमकते होठ, चमकते आंखें, चमकता मस्तक, चमकता माथा, माथा था क्या, मस्तक माथा एक ही, चमकता चेहरा, मस्तक, आंखें, होठ, क्या, पर इसका करना क्या है? इसका करना क्या, हाँ, साक्षात्कार, अच्छा जैसे वो चित्र बदलता है वैसे तुम भी इसका साक्षात्कार करो, जैसे वो जादूगर दिखाता है ये देखो वैसे ये दिखाओ, ये था, और वो उंगली का भी था, जैसे वो उंगली के लिए कहते एक है और जो सहयोग के लिए कहते एक है वो एक, तो एक तो सारी मुरली में सार रूप, सबसे पहला आधार है हम, उद्धार मूर्त है हम, उदार है, ईर्ष्या हटा देना, यहां ईर्ष्या जितनी गहरी है उसका कारण ढूंढना, ईर्ष्या है क्यों, जाने दो ना किसको आगे जाना है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम देख रहे हैं कोई ज्यादा सेवा कर रहा है उसके ज्यादा हिसाब है उन लोगों के साथ एक है जो 100 लोगों को संदेश दे रहा है, दूसरा 1,00,000 को दे रहा है, तो उसने 1,00,000 के साथ हिसाब जोड़े है, हमारे कम से अच्छा है एक रीति से, ठीक है ना, करने दो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ईर्ष्या करने से वो सफलता दूर जाएगी हमसे, ईर्ष्या क्या करना है, जिसको जाना है जाने दो, खुला मैदान है, एक, दूसरा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसिज्म, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करो, जो जो कर रहा है करने दो, क्रिटिसाइज करो तो बदला लेते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाएंगी ज्यादा। अगला, तीन विशेषताएं, निर्विकल्प, निर्विघन, निर्विकारी, उसके बाद में समय, समय संकल्प बोल, उसके बाद में रूहानी गुलाब हो, अर्जुन हो, और चुंबक सितारा हो जिसमें दुनिया है, मुझ में दुनिया समाई हुई है, उसके बाद में ये लाइट हाउस, माइट हाउस, और माइक के पीछे बोलते समय माइक हो, अवतार हो, और अटल संकल्प, प्रतिज्ञा, प्रण, एक है, एक के है, एक को प्रत्यक्ष करना है, और अंदर में गड़बड़ ना हो, सब एक एक में जुड़े हुए हो, हाँ वही जो चित्र दिखाते हो वैसे ही तुम, अभी अभी ये, अभी अभी वो, अभी अभी वो चित्र दिखाओ, जादू। तो ये संडे की मुरली थी, एक दो पॉइंट आज की मुरली की बता दो, फिर पूरा करते जो एकदम नई थी, ऐसा कुछ बता दो, किसी को अपने में अटकाना नहीं है, फंसाना नहीं है, कनेक्शन अपने से नहीं जोड़ना है, किधर से जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, बाबा से जोड़ना है, बाबा बाबा ओहो आना और जाना वो भी एक है जो सुबह देखा था, बाबा से बातें करनी है, बाबा से हेलो करना है, राजी रखो, राजी रहो, अर्जी ज्यादा नहीं डालते रहो, और मैं अप्रैल फूल बनाती है, बता के थोड़ी बनाती है, योग बल जमा करना है, पावर जमा करनी है, बल है, हाँ तुमको फीलिंग आनी चाहिए, इंग्लिश शब्द फीलिंग, कौन सी फीलिंग आनी चाहिए ये भी एक प्रश्न है, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति।